ओम शांति। और मैं इस समय मंच पर डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा जी को बुलाना चाहता हूँ, वो कृपया स्टेज पर पधारने का स्वागत करें। दिनेश भाई जी ये बैचलर ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एडमिटेड अमरवती यूनिवर्सिटी, और इन्होंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी AIDU इलाहाबाद से भी किया है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन नागपुर से इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया है। MSc काउंसलिंग स्पिरिचुअल हेल्थ एंड एनिमल यूनिवर्सिटी, MSc योगा वैल्यू एजुकेशन एनिमल यूनिवर्सिटी, इन्होंने MPhil फिजिकल एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रखा है, और PhD योगा फिजिकल एजुकेशन NPhil इन ग्वालियर से कर रखा है। इनके साथ इनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं कि बहुत ये आपको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे। इनको हम स्वागत करते हैं। दूसरे में मंच पे मैं बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर कृष्णकांत सर जी को फरीदाबाद। ये प्रिंसिपल अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, इंटरनेशनल मोटिवेशनल कोच फिजियोथेरेपी मनीष नागपुर, टोक्यो पेरिस पैरा ओलंपिक्स मेडलिस्ट हैं। टॉपिक इनका है होलिस्टिक फिटनेस। DR दिनेश चंद।
ओम शांति। हम टॉपिक पर चलते हैं डायरेक्टली, होलिस्टिक फिटनेस। आप सभी स्पोर्ट्स से हैं और आप लोगों की फिटनेस ज्यादातर आम लोगों से बहुत अच्छी होती है, फिर भी आज के टाइम का एक बहुत ही वक्त के हिसाब से ज्वलंत एक समस्या है कि सारी चीजें होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मनुष्य को शारीरिक है, मानसिक है, या कहीं ना कहीं किसी और प्रकार से कुछ ना कुछ टेंशन्स वो फेस कर रहे हैं। और देखा जाए तो हमारे पास जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो आप देखें कि आज इंडिया में हम, जैसे दिल्ली से मैं हूं तो गुड़गांव में कनेक्टेड हमारा एक मेदांता हॉस्पिटल है, स्टार फैसिलिटीज, एक से एक अच्छे डॉक्टर्स और एक से एक अच्छा पैकेज, एक से एक अच्छे इक्विपमेंट्स। इन सब के बावजूद पेशेंट को जब लेकर जाते हैं तो क्या आप निश्चिंत होते हैं कि वापस ला सकते हैं? डॉक्टर्स क्या गारंटी लेते हैं? कोई भी डॉक्टर ऐसा है कि जो एक भी गारंटी है आप रख जाओ, ये इतना आपका पैकेज है और ये गारंटी है कि पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा? होता है? फॉर्म किसको भरना पड़ता है? पहले आपको भरना पड़ता है। कंसेंट फॉर्म किसका होता है कि भाई मैं तो ट्रीट कर रहा हूं और बाकी जो भी होगा रिजल्ट डिपेंड्स ऑन, अगर कुछ समझो गड़बड़ होती है, कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से देखो पूरी कोशिश की लेकिन ट्रीटमेंट, आई ट्रीट ही क्योर्स, है ना? डॉक्टर के पीछे बड़ी अच्छी कोटेशन होती है ना, इसीलिए कि भाई मैं ट्रीटमेंट तो कर रहा हूं, रिजल्ट क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। और इन सब के बावजूद आप देखेंगे कि हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं आज इंडिया में, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, बहुत अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी है आज, जो वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी चल रही है वही लगभग हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, है ना? किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए आपको बाहर जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीजें यहां अवेलेबल हैं। और आज सबसे बड़ा एक मेडिकल इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, आपका एक कार्ड बनता है, उसकी लिमिट है 5 लाख 10 लाख, उतने तक का ट्रीटमेंट आपका फ्री है। लेकिन मेडिकल भी हो गया, ट्रीटमेंट भी फ्री हो गया, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास हाईएस्ट है, बेस्ट अवेलेबिलिटी है, डॉक्टर्स भी हमारे पास एक से एक अच्छे हैं, एक से एक क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, नॉलेज वाले हैं। उसके बाद भी एक ही डॉक्टर 10 लोगों को सर्जरी करता है, 10 में से 8 पे सक्सेस होता है, 2 पे नहीं भी होता, या 10 लोगों में 8 पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, 2 की नहीं होती। एक ही सिस्टम से ऑपरेट किए हैं, समझो कुछ नी रिप्लेसमेंट किया है, एक ही कंपनी की सारी चीजें यूज की हैं। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई बार लोगों से मिलना होता है, वो आते हैं एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, इन चीजों को सीखने के लिए। तो देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स लगभग 15 दिन में ही बड़े अच्छे से चलना शुरू हो गए हैं, उनका डर भी खत्म है और बड़े आराम से उन्होंने वॉकिंग शुरू कर दिया है, और कुछ पेशेंट्स 6 महीने हो गए। नी रिप्लेसमेंट कब हुआ? 6 महीने पहले पूछते हैं, जब उनसे कोशिश करते हैं उनको खड़ा करने की, बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाते हैं, खड़े होते हैं तो बड़ा पेन फील करते हैं, रिकवरी नहीं हो पा रहे, क्या करें? सबको सिस्टम एक था, सबसे अच्छी चीजें हमने यूज की, अच्छे से अच्छा साधन हमने, उपलब्ध साधनों को यूज किया, फिर भी रिकवरी पे फर्क है। क्या कारण हो सकता है रिकवरी पे फर्क क्यों आ रहा है? क्यों? माइंडसेट, यस, वही है। तो होलिस्टिक फिटनेस क्या करती है? हमारा माइंडसेट ही बदलती है, और जितना हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है, अच्छा है, उतना चीजें अच्छी होती है। आज हम देखें कि हमारा जो फिटनेस इंडेक्स है, ये सर्वे है लेटेस्ट, अभी लगभग 10 से 15 दिन पहले का है, तो वो कह रहे हैं कि लगभग 2000 में जो लोग अनफिट थे वो एक इंडेक्स था 22%। ये लेटेस्ट सर्वे है, लेटेस्ट, और उसके बाद 2014-24 आप देखिए उस तरह से कि रेशो कहां से बढ़ रही है, 22 से 34 और अभी 49, लगभग 50%। 2024 का जो लेटेस्ट वो रिपोर्ट है वो कहता है लगभग 49% लोग अनफिट हैं, और रीजन क्या है? चलिए, वो काउंटिंग बता रहे हैं, जो सर्वे की काउंटिंग है, वो कहते हैं कि लगभग 10 करोड़ लोग भारत में डायबिटीज उनको है, 10 करोड़ लोगों को। उसके बाद 31 करोड़ लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन की दिक्कत है, और 25 करोड़ लोग हैं उनको, आप देख रहे हैं कि मोटापा, ओबेसिटी, ये बहुत लोगों को है, ओबेसिटी बहुत लोगों को है, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज होता जा रहे हैं, और हाई कोलेस्ट्रॉल भी लगभग 16 करोड़ हाई कोलेस्ट्रॉल, ये कंडीशंस हैं कि सारी हमारे पास उपलब्ध साधन बहुत अच्छे हैं, फिटनेस के लिए लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, छोटे बच्चे जो कभी स्कूल के बच्चे होते थे जिम नहीं जाते थे, आजकल जिम जाने का एक पैशन है छोटे छोटे शहरों में, इवन विलेजेस में भी बच्चे जिम जा रहे हैं, फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं, बावजूद उन चीजों के गाइडेंस अच्छी है, खाना पीना बहुत अच्छा है, मिनरल वाटर पहले कभी पीते थे, आज से 50 साल पहले अगर जाएं तो कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में कौन मिनरल वाटर यूज करता था, लेकिन आजकल बच्चों को मिनरल वाटर एक शौक है और अब समझिए कि सोसाइटी का तरीका भी बन गया है कि मिनरल वाटर यूज हो रहा है। खाना पीना बड़ा अच्छे से हम उनके जो है ना सारी चीजें क्या क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं सारी चीजें पढ़ के फिर उसको यूज करते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद स्थिति यहां आती जा रही है। स्टेटस बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं, हाइजीन्स बढ़ते जा रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स अच्छे से अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, एक से एक रिसर्च नई से नई आती जा रही है, दवाइयां नई से नई आती जा रही है, एक से एक नई कंपनियां आ रही हैं और बड़ी हाई डोज वाली दवाइयां डेवलप करती जा रही हैं। लेकिन जहां हाई डोज की दवाइयां डेवलप करनी पड़ रही है, इट मीन्स कि हमारी फिटनेस का लेवल डाउन आता जा रहा है। रीजन कि हमारा फिटनेस का एक एस्पेक्ट जो फिजिकल वाला है वो बड़े अच्छे से हमारे डॉक्टर्स समझते हैं, बड़े अच्छे से हमें उसका ज्ञान है, लेकिन क्या हम एक सिर्फ बॉडी हैं, सिर्फ शरीर हैं? क्या कहा जाए? पेशेंट को जब लेके जाते हैं हॉस्पिटल में कई बार, तो पेशेंट गया और अगर एक्सपायर हुआ तो क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ द पेशेंट। इट मींस दो लोग गए थे, मींस कोई और भी एनर्जी है साथ में जो गई थी, और उस एनर्जी के लिए ट्रीटमेंट हमें नहीं मिल पा रहा है। नो डाउट हमारे जो भी ट्रीटमेंट है अच्छे से अच्छे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, दवाइयां अच्छी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो अपना काम पूरा परफेक्टली कर रही हैं वो चीजें, लेकिन फिटनेस फिर भी हमारा ग्राफ भी डाउन आ रहा है, लेवल भी डाउन आ रहा है और मन की स्थिति भी लोगों की जो स्ट्रेस का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब इसलिए होलिस्टिक फिटनेस की जरूरत है कि होलिस्टिक फिटनेस क्या करती है कि पूरे मनुष्य की स्टडी करती है, पूरा एज ए कंप्लीट मैन उसको हमने देखना है, उसकी पर्सनैलिटी को भी देखना है, उसके परिवार को भी देखना है, उसकी लाइफ कैसे लीड कर रहे हैं वो भी देखना है, वो सारी चीजें देखनी है हमने। तो ये फोकस है होल रादर देन इलनेस, सिर्फ बीमारी को नहीं देख रहा है। आप किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए तो वो सिर्फ आपकी बीमारी और दवाई तुरंत आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता है, आपकी हिस्ट्री लेता है। आप काउंसलर के पास जाइए, वो एग्जैक्ट आते ही आपको दवाई वगैरह कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, पहले आपकी हिस्ट्री ले रहा है, फैमिली में कौन है, आपकी क्या स्थिति है, परिवार कैसा है, बहुत सारी चीजें आपसे पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजों से हम जुड़े हुए हैं। फिर होलिस्टिक हेल्प क्या कहती है कि कैसे आप जीवन तो जिए, अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन खुशी से कैसे जिए, प्यार से इस जीवन को एंजॉय करते हुए कैसे जिए, लाइवली कैसे इस जीवन को जिए, उसके लिए होलिस्टिक फिटनेस हमें आवश्यक है। और होलिस्टिक फिटनेस के डायमेंशंस अगर आप देखें तो यहां जहां मेडिकल साइंस हमारी शरीर को सिर्फ बॉडी मान के पूरा उस पर काम कर रही है, उस पर वर्कआउट कर रही है, उसको ट्रीट कर रही है अच्छे से, वहीं आज से अगर 200-300 साल पहले जाएं, 100 साल पहले भी अगर जाएं, तो लोग आयुर्वेद पे, बाकी चीजों पे और जो हमारे हर्बल चीजें होती हैं जैसे काढ़ा बनाया किसी चीज का उस तरह से, उन चीजों को बहुत प्रयोग करते थे और फिर जल्दी से अच्छे भी हो जाते थे क्योंकि विश्वास अच्छा होता था। तो होलिस्टिक फिटनेस में क्या क्या आपके हैं कि हमारा शरीर सिर्फ 5 तत्व नहीं है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ साथ हमारे अंदर मन भी है, सोल भी है, और मन के अंदर उठने वाले जो स्पंदन है, जो वेव्स हैं, वो भी इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं और वो वेव सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। तो होलिस्टिक फिटनेस उन सभी डायरेक्शन में हमें ट्रीट करने की कोशिश करती है, उसका रास्ता बताने की कोशिश करती है कि मुख से किस तरह के हमारे शब्द निकलते हैं, स्पर्श हमारा कैसा है। एक नर्स का स्पर्श हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं आपको बहुत जल्दी हील करने में मदद करता है, थेरेपी है। मीन्स आज बच्चों को भी सिखाना पड़ता है, लेकिन मेंटल लेवल हमारा क्या है कि बच्चों को भी सिखाना पड़ता है। छोटे बच्चों को स्कूल्स में जाते हैं जब क्लासेस लेने, तो उनको बताना पड़ता है कि बेटा अगर गुड टच और बैड टच के बारे में उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। कोई टीचर आपसे अगर गलत व्यवहार कर रहा है, कुछ इस तरह का कोई और वर्कर स्कूल का कर रहा है, जैसे कि आपने केसेस अभी लेटेस्ट भी सुने होंगे, तो उनके बारे में उनको बताना पड़ता है। हमारे शब्द अगर अच्छे हों, हमारा स्पर्श अगर प्यार से भरपूर हो, और फिर है रूप रस और गंध। हमारे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, वो सारे ही जहां पॉजिटिव होते थे, लोगों को सुख देने वाले होते थे, आज काफी हद तक उसमें गिरावट आई है। और वही गिरावट हमारी फिटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी की वजह से हमारा स्वास्थ्य का जो ग्राफ है वो ज्यादा अच्छे से उठ नहीं पा रहा है। वैसे भी आप देखें कि एवरेज लाइफ इंडिया की अमेरिका जैसे कंट्री से लगभग 5 से 7 साल नीचे है। अगर वहां एवरेज एज 70 है तो हमारे पास 60 और 62 के आसपास है। मीन्स अभी भी हम हेल्थ के लेवल में उन लोगों से पिछड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं कि फिटनेस की जरूरत तो है, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है। हमारी सभी एस्पेक्ट की जो सेहत है, हमारी शारीरिक भी है मानसिक भी है, वो खराब क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो रीजन्स हैं जो इफेक्ट डाल रहे हैं उसके ऊपर, कि एटीट्यूड और बिहेवियर। ज्यादातर क्लासेस आपको इन चीजों के ऊपर हमारे यहां मिलती रहेंगी कि हमारा एटीट्यूड जितना अच्छा है, हमारा बिहेवियर जितना अच्छा है, उतना हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। एक बार एक रिसर्च की थी कि जब हम गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा, समझिए बहुत आपको गुस्सा आ गया और आपने पूरा गुस्से में किसी को कुछ भी बोला, उस गुस्से के दौरान हमारे माइंड से जो सिक्रेशंस हैं जो निकल रहे हैं वो हल्का हल्का पॉइजनस होते जा रहे हैं। वो ब्रेन सेल्स के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहे हैं, वो सारा फ्लो ब्लड का बॉडी में जाएगा, वहां भी उसका इफेक्ट हमें आता ही आता है। सिर्फ एक विकृति हमने देखी या एक हमने गुस्सा देखा, बाकी सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर बहुत गहराई से हमारा बिहेवियर इफेक्ट डालते हैं। किसी भी विकार को आप ले लें, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, किसी भी एक को अगर पकड़े तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के जो सिक्रेशंस हैं उनके ऊपर बड़ा गहराई से असर डालते हैं। और इन चीजों की शिक्षा आज कमी है। किताबें पढ़ाना, कोचिंग सेंटर्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज हम सोचें, जब नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे जहां का रिजल्ट 20% होता था, मींस 80% फेलियर, और कुछ नहीं था, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं था, सीधे आप जाइए, द्वार बने हुए हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों द्वारों में आप घुसते जाइए, जो जो गुरु आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन का जवाब देते जाइए। अगर आपने ईस्ट क्रॉस किया तो गुरु कहेगा अब उधर वेस्ट की तरफ आपकी एंट्री है, उस गुरु के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। वो भी आपने क्रॉस किया तो नॉर्थ की साइड भेजेगा कि नॉर्थ वाले गुरु के क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, उसका भी जवाब दिया, साउथ वाले गुरु के क्वेश्चंस का जवाब दिया, उसके बाद सेलेक्ट हुआ, उसके बाद जब स्कॉलर बन के निकलेगा तो पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड होती थी, लेकिन रिजल्ट बहुत कम होता था क्योंकि वहां प्रैक्टिकल उसको सिखाकर भेजते थे, सिर्फ थ्योरी नहीं थी, वहां प्रैक्टिस थी। एक वर्णन आता है कि जब आप पढ़ते होंगे महाभारत कि युधिष्ठिर को जब गुरु सिखाते थे सदा सत्य बोलो, तो सभी भाई नेक्स्ट डे याद करके आ गए, लेकिन युधिष्ठिर बोले कि गुरुजी याद नहीं हुआ। तो गुरुजी ने ठीक है छोटा सा पनिशमेंट दिया, दूसरे दिन आए तो भी बोले कि नहीं याद नहीं हुआ। दूसरे दिन गुरुजी ने दो स्लैप लगाए कि अभी भी याद नहीं हुई, यार एक छोटी सी चीज है, सब लोगों को याद हो गया, सारे पढ़ रहे हैं। तीसरे दिन भी युधिष्ठिर को याद नहीं हुआ, तीसरे दिन भी पनिशमेंट मिला। चौथे दिन जब आए तो युधिष्ठिर ने बोला गुरुजी मुझे याद हो गया। गुरुजी ने बड़ा आश्चर्य से पूछा कि ये सभी तुम्हारे भाई पहले दिन ही याद करके आ गए, इतनी छोटी सी बात थी, सदा सत्य बोलो कौन सी बड़ी चीज है। उन्होंने कहा याद तो हुई लेकिन मेरी धारणाओं में नहीं आई। एजुकेशन सिस्टम था हमारा ये, जो हमें धारणाओं में लेके आता था, और युधिष्ठिर के लिए कहा जाता था कि ये जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। अपोजिशन वाले भी उनका विश्वास करते थे, उनका रिगार्ड करते थे, मींस कि सत्य की प्रतिमूर्ति तैयार हुई, सिर्फ एक लेसन याद नहीं हुआ, सत्य की प्रतिमूर्ति आपके सामने प्रक्षेपित हो गई, निर्माण हो गई। ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम था जो इतना ऊंचा हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता था, और वही सिस्टम गुरुकुल में चले जाइए, हमारे गुरु लोग बच्चों को सुबह उठना, गुरु का सम्मान करना, बाद में जंगल से लकड़ियां लाना, उसके बाद भोजन बनाना, और उसके बाद पढ़ाई, सब कुछ सिखाते थे। बच्चा जब निकलता था तो बड़े अच्छे से उसको चीजें याद होती थी कि अगर शास्त्रों में गुरुजी ने 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य सिखाया है तो सिखाया है, उसके बाद अगर गृहस्थ में प्रवेश सिखाया है तो सिखाया है, वो धारणाओं में है। और उस शिक्षा की वजह से हमारा जीवन बड़ा सुखी था, बड़े ही आनंद में था, क्योंकि हमारी शिक्षा सिर्फ कागजों पे नहीं थी, एग्जाम पास करने के लिए नहीं थी, कंपटीशन के लिए नहीं थी, धारणाओं के लिए थी। वो शिक्षाएं हमारी एटीट्यूड को डेवलप करती थी। कबीर जैसे अनपढ़ लोग जो कभी स्कूल गए नहीं, कॉलेज गए नहीं, उनका बेटा कमाल जब बड़ा हुआ तो पत्नी ने बोला कि भाई अब इसकी शादी करनी है, बड़ा हो गया है, परिवार को आगे देखना है। कबीर ने कहा ठीक है अभी बात करते हैं, बुलाया कमाल को, लेकिन कबीर के दोहे सुन सुनकर ही कमाल बड़ा हुआ था। बहुत जोर लगाया माने, बेटा मना करता गया, अंत में एक दिन पिता ने थोड़ा उत्तेजित होकर पूछा कि भाई क्या कारण है, हमने इतनी अच्छी तुमको शिक्षा दी है फिर भी तुम शादी से इनकार करते हो, क्या कारण है। कमाल ने जवाब दिया, पिताजी आपने सिखाया है कि जो मेरे से बड़ी उम्र की है मेरी मां के बराबर है, जो मेरे सेम एज वाली हैं सिस्टर हैं जो छोटी हैं बेटी के बराबर हैं। अभी शादी किसे करूं? कबीर निरुत्तर हो गए। कबीर ने अपना दोहा लिखा कि बोरा वंश कबीर का, कि कबीर का वंश अब खत्म है, बोरा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, आधा संत कबीरा भया, पूरा संत कमाल। हमारी एजुकेशन का लेवल, हमारा एटीट्यूड कितना ऊंचा होता था। कहां थी भारत की सभ्यता, कहां थी भारत की संस्कृति, जिससे हमें गुमान होता है, और उसी गुमान को तोड़ने का प्रयास तक्षशिला, नालंदा और जितने भी ये सिस्टम थे हमारे एजुकेशन को धीरे धीरे तोड़ के, धीरे धीरे तोड़ के, उनको जला के, उनको नष्ट करके इंग्लिश सिस्टम धीरे धीरे एजुकेशन का शुरू हुआ कि जहां किताबें बची हैं, एजुकेशन बची है, बच्चा अगर दसवीं में फेल होता है तो आत्महत्या करने के लिए तैयार है अगर ज्यादा प्रेशर है तो। बारहवीं के स्कूल्स में आप जाइए काउंसलिंग करने के लिए, आधे से ज्यादा बच्चे स्ट्रेस में जी रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाइए, अगर 40-50 साल पहले वाली एज पे जाएं, अगर आप वहां रहे होंगे तो 10th और 12th को कौन सा बोझ समझते थे? ठीक है, मेहनत करते थे, लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं होता था कि बच्चे को आज लग रहा है कि अगर फेल हो गए तो शायद घर वापस नहीं आऊंगा, सुसाइड ही कर लूंगा। कोटा जो हमारा एक बहुत अच्छा एजुकेशन का हब माना जाता है, कितने बच्चे वहां सुसाइड करते हैं? लाखों रुपया मां बाप खर्च कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, लेकिन उसका सही से एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जो चाहिए उसको वो नहीं दे पा रहे हैं, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये डेवलप करते जा रहे हैं। तुम्हें इससे दो नंबर ज्यादा लेने हैं, इससे ज्यादा लेने हैं, ये पड़ोस वाला बच्चा चार नंबर ज्यादा लाए हैं। और हो क्या रहे हैं? हमारी पर्सनैलिटी में हमारा एटीट्यूड एक बहुत ही लो लेवल पे आता जा रहा है, या तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर पे जा रहे हैं, या बहुत ज्यादा लो लेवल पे आ रहे हैं, या तो डिप्रेशन पे जा रहे हैं, या मानिया पे जा रहे हैं, या तो दूसरे को मारेगा नहीं तो खुद को मारेगा। तो एटीट्यूड और बिहेवियर जो है हमारा, ये हमारी फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारी एजुकेशन अच्छी है, हमने बच्चे को बोल्ड बनाया है, अगर हमने उसको समस्याओं से जूझना सिखाया है, परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत दी है, तो वो छोटी छोटी चीजों पे नहीं घबराएगा, और जब चीजों से घबराएगा ही नहीं तो सेहत अपने आप अच्छी रहेगी। जब लड़ना सीख गया तो सेहत अपने आप अच्छी रहेगी। पहलवान जब भी रिंग में जाता है तो घबराता थोड़ी है, बॉक्सर जब रिंग में जाता है घबराता थोड़ी है, सिर्फ टेक्निक्स देख रहा है उसकी, उसके हिसाब से लड़ता है, उसको मजा आता है, एंजॉय करता है, फाइट को एंजॉय करता है, और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाता है वो बड़े अच्छे से फाइट एंजॉय कर रहा है, बड़े आराम से लड़ रहा है। तो जितना हमारा एटीट्यूड कमजोर होता जा रहा है, एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। दूसरा पॉइंट है हमारे रिलेशंस। आज रिलेशंस लगभग परिवार में दो चार लोगों को भी देखें तो उनके भी बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं कहे जा सकते। रीजन कि हमारी जो परवरिश है वो इतनी ईगो से भरपूर है कि पत्नी पति से जल्दी कंप्रोमाइज नहीं करती, बहुत जल्दी लड़ाई तैयार है, क्योंकि वो भी एजुकेटेड है, वो भी एजुकेटेड है, वो भी कमाती है, तो लड़ाई बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं। और कोर्ट में जाइए तो पहले दो सालों में, मीन्स कि मैरिज के पहले दो सालों में लगभग 40-50% जो केसेस होते हैं डाइवोर्स पिटीशन के, पहले ही दो सालों के होते हैं। धीरे धीरे तो आदमी एडजस्ट होता है तो निभ जाती है, लेकिन पहले दो चार साल जो है बड़ा भारी पड़ते हैं, क्योंकि एटीट्यूड किसी ने अच्छा सिखाया नहीं, बिहेवियर अच्छा सिखाया नहीं, रिलेशंस निभाने की नॉलेज किसी ने दी नहीं। उसके बाद हमारा जो फूड है, हमारा खाना भोजन शरीर के लिए प्लस हमारे मन के लिए, दोनों भी काम करते हैं। हमारा खाना मन पे भी काम करता है और हमारे शरीर पे भी काम करता है। और इस चीज को जब महाभारत का युद्ध चल रहा है तो लॉर्ड कृष्ण क्या समझा रहे हैं अर्जुन को, युद्ध चल रहा है, सेनाएं खड़ी हैं सामने, उसको समझा रहे हैं, युक्ता हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न वा बोधस्य योगो भवति दुखः। कहते हैं कि अगर आपका भोजन सात्विक है, अच्छा है, आपका विहार, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपके स्वप्न अगर सात्विक हैं, तो आपको जीवन में दुख कभी भी नहीं होगा। इस तरह का योगी जिसका आहार और विहार पूरा युक्ति पूर्वक है, जिसके स्वप्न भी पवित्र हैं, शुद्ध हैं, उसको जीवन में दुख नहीं होगा। और ये बाबा मुरली में हमें स्वप्न की पवित्रता तक, आप जिन बहनों और जिन भाइयों के, जिन ब्रह्मचारियों के हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं, उनको बाबा ने स्वप्न तक की पवित्रता सिखाई हुई है। इसलिए यहां का भोजन आपको बहुत अच्छा लगता है और बड़ी जल्दी से आपके ऊपर असर डालता है। लगता है अच्छा लग रहा है यहां भोजन जी? क्योंकि प्यार से परिपूर्ण है, पवित्र आत्माओं के द्वारा बनाया गया है। तो हमारा जो फूड है डायरेक्टली रिलेटेड है कि जैसा हमने अन्न खाया है अभी उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आना शुरू होता है, और जैसे ही बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है वैसे ही मन की स्थिति, अगर उसको आप गुस्से में हैं और तब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो तब देखिए अब मुश्किल से एक आध बाइट ले पाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अगर आपका मन प्रसन्न है और आप कहीं पहाड़ों पे घूमने गए हैं और बड़ी मुश्किल से कुछ रूखा सूखा खाने को मिला है तो बड़े प्यार से एंजॉय करके आप खा रहे हैं, होते हैं ना? तो मन की स्थिति उस भोजन को आहार बनाती है, उसी भोजन को विष बनाती है। कहते हैं कि भोजन ही औषधि है, अगर भोजन हमने सही तरीके से किया है तो वो औषधि का काम करते हैं। इसके बाद स्लीपिंग पैटर्न कि आज जैसे जैसे मोबाइल का प्रचलन बढ़ रहा है तो ज्यादातर जो भी लोग हमारे पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए, तो जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपका सोने का टाइम क्या है, कितने बजे सोते हो, तो 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ये बहुत छोटी बात है। 12 से पहले तो किसी ने बोला नहीं बच्चों ने आज तक, पढ़ने वाले बच्चों की मैं बातें कर रहा हूं। मीन्स कि अगर जब 1 बजे या 2 बजे हमारा सोने का पैटर्न है और 12 बजे या 11 बजे हमने कुछ खाया है, वो क्या करेगा? वो डाइट हमने जब खाई है तो हमारा शरीर एक काम करता है, उसको पचाना शुरू करता है, उस पर वर्कआउट शुरू करता है कि इसको भी डाइजेस्ट करना है, सिक्रेशंस निकलने शुरू होते हैं, हार्मोन्स निकलना शुरू होते हैं, लीवर अपना काम करता है, किडनी अपना काम करती है, इंटेस्टाइन अपने सिक्रेशंस छोड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और जो लेट नाइट वाला भोजन है जब हमने लिया है तो उसको पचाने के लिए बॉडी का वर्कआउट शुरू हो गया है, तो नींद अपने आप नहीं आएगी, स्लीपिंग पैटर्न हमारा डिस्टर्ब होगा। और धीरे धीरे जब इसको कुछ दिन हम ध्यान नहीं देते हैं तो शरीर के साथ साथ हमारी बायोलॉजिकल वॉच भी डिस्टर्ब होना शुरू होती है, और वो बायोलॉजिकल वॉच फिर जब डिस्टर्ब हो गई है तो अब बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, सेल्स और टिश्यूज की रिकवरी सही से हो नहीं पा रही है, जिस लेवल पे जाके ऑर्गन्स अपनी हीलिंग करते वो हीलिंग बॉडी की हो नहीं पा रही है, और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, नई नई बीमारियां, नई नई उसके लिए रिसर्च मेडिसिन डेवलप होती जा रही हैं, लेकिन रूट कॉज अगर हम पकड़ लें तो हमारी फिटनेस अच्छी रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है कि किस तरह से होलिस्टिक फिटनेस हम अपनी बेटर मेंटेन कर सकते हैं। अब सब लोगों की फिटनेस स्पोर्ट्स वालों की अच्छी होती है, लेकिन फिर भी और उसको बेटर कैसे बना सकते हैं। कि पहला है कि सात्विक डाइट, जो भी वेज डाइट है, प्योर वेज डाइट है, वो हमारे शरीर पर बहुत अच्छा असर डालती है और साथ साथ हमारे मन को सात्विक रखती है, शांत रखती है हमारी प्रकृति को, और हमारा टेम्पर जल्दी से लूज नहीं होता है। टेम्पर बहुत सारी लड़ाइयां झगड़े जल्दी से जो हमने टेम्पर लूज किया है उसी से होती हैं, लेकिन भोजन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जितना सात्विक भोजन है, प्योर वेज वाला है, वो आपको इसमें बहुत अच्छी हेल्प करता है, मदद करता है। फिर है वैरायटी एक्सरसाइजेस। वैरायटी एक्सरसाइज मीन्स कि जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर कुछ है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। कोई आपका गेम है विशेष तो उस गेम के लिए पर्टिकुलर आपको एक्सरसाइज करनी है। कुछ आपने बोरिंग अगर उससे हो गए हैं, समझे कि रूटीन आप 10 दिन से वही फॉलो कर रहे हैं और आपका आज ग्राउंड में जाने का दिल नहीं कर रहा है, सर ने बुलाया है 6 बजे लेकिन आज दिल नहीं कर रहा, तो उस रूटीन को थोड़ा सा चेंज करें, उसमें वैरायटी डालें। मींस कि रिक्रिएशन ले लीजिए कुछ, कि बास्केटबॉल खेलने के लिए ले लीजिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए ले लीजिए, एक्सरसाइज छोड़ दीजिए उस दिन, स्किप कर जाइए। तो वो जो पैटर्न है आपका जब चेंज होगा, जो वैरायटी उसमें डलेगी, तो आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा। फिर है हॉबी एक्टिविटीज फॉर रिक्रिएशन। आज जो हमारी पुरानी हॉबीज पहले होती थी उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास ना तो टाइम है और ना ही हमारे पास कोई उसके लिए ध्यान उसको दे पा रहे हैं। जो भी बचपन की हमारी हॉबीज होती थी, कोई भी आपकी हॉबी अगर रही, वो आपने अगर मेंटेन की है तो आप समझिए कि अगर कहीं प्रॉब्लम आई भी है, कहीं हेल्थ का कोई इश्यू इस तरह का आया भी है, तो वो हॉबी आपको बहुत जल्दी से उससे ऊपर उभारती है। अब हमारे अभी एक क्रिकेटर का एग्जाम्पल देखेंगे, ऋषभ पंत का, जब एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर्स ने बोला कि शायद 2 से 2.5 साल रिकवरी पे लगेगा, 2 से 2.5 साल, लेकिन अपने गेम से इतना प्यार है, हॉबी है उसकी, उसने जीवन में उसको डाला है क्रिकेट को, वो हर वक्त उसको लगता था, कहता मैं स्वप्न देखता था कि आज खेल रहा हूं, आज खेल रहा हूं, आज ग्राउंड पे हूं, आज ये कर रहा हूं मैं, कल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूं, और लगभग 1 साल में उसने रिकवरी की, और 13-14 महीने में जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो डॉक्टर्स कहते मिरेकल है। जो हमारी अंदर से सॉफ्ट टिश्यूज की चोटें हैं, रिकवर करने में बहुत टाइम लेती हैं, बोन्स की इंजरी हैं, रिकवर करने में बहुत टाइम लेती हैं, रिकवर करेंगी उसके बाद रिहैबिलिटेशन, उसमें भी टाइम चाहिए, लेकिन उन सब चीजों को क्रॉस करता हुआ वो क्रिकेटर हमारा एकदम से सामने 13 से 14 महीने में, साल के बाद फिट। किस चीज ने उसको मोटिवेशन दिया? क्योंकि गेम को उसने हॉबी बनाया हुआ है, उसका जीवन उसके साथ है, कि वो गेम के बिना रह ही नहीं सकता। जिस तरह से कलकत्ता की तरफ जाइए तो जितने भी स्कूल्स होंगे, बच्चा बिना फुटबॉल खेले रह ही नहीं सकता, शौक है उनको कि फुटबॉल कहीं भी चल रहा है तो बच्चा ग्राउंड में कूदेगा ही अगर वो वहां से आया है। तो अगर आपने हॉबी मेंटेन रखी है और थोड़ा टाइम रिक्रिएशन का अपना मेंटेन रखा है, कुछ ना कुछ समय आपने फ्री इस तरह का निकाला है, तो हम स्ट्रेस से भी बचते हैं और बीमारियों से भी बचते हैं। फिर है रेस्ट और स्लीप। मींस की रेस्ट हमारा लगभग 6 घंटे मिनिमम बॉडी को चाहिए, कोई चार घंटे में भी रिकवर करता है, कोई पांच घंटे में, कोई छह घंटे में, डिपेंड करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर नेचर किस तरह की है, वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, तो थोड़ा सा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी पांच छह घंटे लगभग आपको अच्छे से रिफ्रेश करते हैं। लेकिन वो नींद हमारी कैसी चाहिए? डीप स्लीप चाहिए। आजकल स्लीप के लिए लैब्स बनी हैं। आपकी स्लीपिंग क्वालिटी किस तरह की है, सोते वक्त आपके शरीर की स्थिति, आपके मन की स्थिति कैसी है, वो आपकी वेव्स, आपकी जो ईईजी है वो चेक करते हैं और देखते हैं कि जब डीप स्लीप में जाने का टाइम है उस वक्त भी मन अगर अल्फा स्टेज पे नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है वेव्स, तो रिकवरी नहीं कर पाएगा। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो जितना हमारी साउंड स्लीप है, जितना हम सुबह उठते हैं एकदम से रिफ्रेश महसूस करते हैं, शरीर एकदम से रिफ्रेश है, तो वो नींद हमें रिकवरी अच्छे से अच्छी देती है। आप सारा दिन के बहुत थके हुए हैं, बहुत अच्छा आपने प्रैक्टिस की है सारा दिन, लेकिन नींद अगर अच्छी आई है तो आप सुबह एकदम से फ्रेश होते हैं और दोबारा प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं बड़े आराम से, एंजॉय करते हैं उसको। तो अपना रेस्ट भी मेंटेन रखें इस तरह से 6-8 घंटे के बीच में, और जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी अपना कंट्रोल रखें, तो हम इससे अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है, चलिए सारी चीजें हमने की, उसके बाद भी कोई दिक्कत आ गई, कोई ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया कि भाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, समझो कि कहीं कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे कहते हैं ना छोटा सा, जैसे लीवर पे स्वेलिंग आना शुरू हो गई, हेपेटाइटिस शुरू हो गया, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जहां डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी क्योर के चांसेस कम है, अगर ऐसा कुछ आ गया है बाई चांस, ईश्वर करे ना आए, तब घबराना नहीं है, किसी भी मोड पे नहीं घबराना है। हमें सबसे पहले उस चीज को डिस्कशन करके काउंसलिंग के सेशंस बहुत अच्छा आपको उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा काउंसलर समझो नहीं मिल रहा है, या आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि, और आप चाहते भी नहीं कि, आप सोचते हैं यार कोई ऐसी कुछ काउंसलिंग करे तो हमारी ब्रह्मा कुमारी की जो बहनें हैं, हमारी जो ब्रह्मा कुमारी के आश्रम्स हैं, कहीं भी आप टाइम लेकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इससे अच्छी थेरेपी, इससे अच्छा ट्रीटमेंट, इससे अच्छी काउंसलिंग इस धरती पे कहीं भी आपको कोई कराने वाला नहीं मिलेगा। इतना अच्छी हमारी बने काउंसलिंग देते हैं। प्रैक्टिकल में ये चीजें आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। ऐसे ऐसे लोगों को रिकवर करते देखा है जिनको डॉक्टर्स ने बोला कि अब एंजियोग्राफी भी होगी, हार्ट की फंक्शनिंग 20% बची है, अब साल दो साल सेवा कर लीजिए, और पेशेंट को लगता है कि साल दो साल तो ये कह रहा है शायद 4-6 महीने का मेहमान हो। लेकिन उन लोगों को जब इसी तरह से राजयोग का मेडिटेशन, काउंसलिंग, अच्छे लोगों के साथ उठना और बैठना, ये शुरुआत बहनों ने कराया, 20-20 साल से सेंटरों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपनी फिटनेस तो बनी बनी, लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनसे कभी पूछते हैं यार ऐसा हुआ था, कहते मुझे कब, मैं तो भूल गया। मींस कि सबकॉन्शियस माइंड से वो चैप्टर डिलीट हो गया, और जब हर वक्त वो चैप्टर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बार 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 आ रहा है, तुम्हारी बीमारी को एग्जिग्रेट कर रहे हैं। इसलिए कभी कुछ ऐसा हो रहा है, इस तरह से लग रहा है, समझो कि आपको लग रहा है कि यार नहीं खेल पा रहे हैं, कि अब गेम में इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इतना खर्चा हो गया, इतनी मेहनत की है, इसमें नहीं नंबर आ पा रहा है, तो इसको क्विट कर देते हैं, तो एक बार जरूर मेरे कहने से, यहां भगवान की धरती पर हैं, तो जरूर एक बार मेडिटेशन के लिए हमारे राजयोग सेंटर पे आप विजिट कीजिए, और बिल्कुल मत घबराइए 100% क्योर, क्योंकि ईश्वर की जो क्योर है सबसे बड़ी क्योर है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुछ जो और टेक्निक्स होती हैं आगे बढ़ने के लिए, जैसे विजुअलाइजेशन है, जैसे रिलैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है, QRT है, क्विक, जो आपको रेस्ट में ले जाती हैं चीजें। फिर है DRT, डीप रिलैक्सेशन, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स। और फिर है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो हम अपने माइंड को देना शुरू करते हैं सुबह, अच्छे थॉट्स देना शुरू करते हैं सुबह उठ के कि मेरी फिटनेस अच्छी है, मैं धीरे धीरे इसे रिकवर कर रहा हूं। ये बहुत जबरदस्त काम करती है, बहुत जबरदस्त काम करती है। हमारे यज्ञ के हमारे बहुत ही सीनियर ब्रदर राजयोगी बीके सूरज भाई जी, आप उनके प्रैक्टिकल अगर देखेंगे, लाखों एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों को उन्होंने इस लेवल पे ठीक किया है। सिर्फ मेडिटेशन का कमाल है और सुबह सुबह अच्छी थॉट लेके अपने मन को सशक्त बनाने का कमाल है। अब ये सारी चीजें हैं, इनके लिए कहीं कोई दवाई हमारे पास नहीं है। आपको सुख चाहिए, आप केमिस्ट की शॉप पे जाइए, बड़े से बड़े केमिस्ट की शॉप पे कोई टैबलेट है जो सुख दे सके। हम लाखों रुपए लेके खड़े हैं, कोरोना काल में आपने देखा ना, लाखों रुपए लेके खड़े हैं एक रेमडेसिविर, एक इंजेक्शन ढूंढने के लिए। ब्लैक में लोग 50-50 हजार लेके घूम रहे हैं, फिर भी जिनको बचना था वो गुरुद्वारे की ऑक्सीजन लेके बच गए, और जिनको नहीं बचना था वो उस इंजेक्शन को लेके भी सेव नहीं हो पाए। मीन्स कि जब मन की स्थिति अच्छी है, मन सशक्त है, थॉट्स पावरफुल हैं, तो हमें एक ओरा क्रिएट करती हैं। अब इसमें सारी चीजें हमारी काउंट कर दी हैं, जो हमारा बचपन से बिहेवियर था, जो पीछे हमने एटीट्यूड अपना डेवलप किया था अच्छा, वो दुआओं का कार्ब बन के मेरी रक्षा कर रहे हैं। वरना एटीट्यूड अच्छा बनाने की पूछे क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है। लेकिन वही चीजें अब मुझे इस बुरे वक्त में मदद कर रही हैं। कहते हैं कि जहां दवा काम नहीं आ रही वहां दुआ काम आती है, और बहुत अच्छे से ये चीजें काम करती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। हमारा जो भी कर्म है, जो बिहेवियर हम पीछे करके आए हैं, वो बड़ा अच्छा हमें हेल्प करते हैं। कोई ना कोई मदद हमें किसी ना किसी पार्ट पे मिल जाती है और हम बच जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और सजेस्टिव डायमेंशंस, किस तरह से हमारी हेल्थ अच्छी रहे, फिटनेस अच्छी रहे, चारों ही डायमेंशंस की, कि शारीरिक भी अच्छी रहे, मेंटल भी, सामाजिक भी, और संबंधों की भी, और हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहे। उसके लिए पहला पॉइंट है हार्मनी इन रिलेशंस। जितना हमारे रिलेशंस हार्मोनियस हैं, जितना हमारे रिलेशंस में एक तारतम्यता बनी हुई है, जितना प्यार बना हुआ है दिल से, हार्मनी दिल से चाहिए, शब्दों की नहीं चाहिए। शब्दों से हम घर में जाके बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन अंदर से अगर हमारा उनके लिए शुभ भावना नहीं है, शुभकामना नहीं है, तो यकीन मानिए दोस्तों, वही चीजें वापस मेरे पास आ रही हैं। स्वप्न में भी अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो वही घूम के वेव्स मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ रहे हैं, है ना। तो जितना हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, जितना प्यार भरे हैं, जितना केयरिंग है, वहां हम अपने को सेफ फील करते हैं, तो वो सेफ्टी हमारी बहुत सारी चीजों को बड़ी जल्दी से रिकवर करती है, हमारी हेल्थ को, हमारी फिटनेस को बड़े अच्छे से इंप्रूव करती है। फिर है एनर्जेटिक फ्रेंड सर्कल, कि जो भी हमारा सर्कल हो अच्छे लोगों के साथ हो, अच्छे एनर्जी वाले लोगों के साथ हो। कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग, अगर संग अच्छे लोगों का है, एनर्जेटिक लोगों का है, तो क्या होता है, एनर्जी फ्लो करने का एक सिद्धांत होता है, क्या है, energy flows from higher level to lower level. तो हमारा संग अच्छे लोगों से जब रहेगा तो कुछ ना कुछ आप उनसे गेन करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे. और सर्कल अगर नहीं मिल रहा है तो सबसे हाईएस्ट लेवल किसका है? सुप्रीम गॉड. हर वक्त एनर्जी का फ्लो है. कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एकांत में जाइए और उस परमपिता परमात्मा को प्यार से याद कीजिए. सिर्फ वो एनर्जी का फ्लो आपको मिलता है और वो एनर्जी आपके मन को, आपके शरीर को अच्छे से भरपूर करती है, आपके संबंधों को भी अच्छा करती है और माहौल बड़ा प्यार भरा बनता है. फिर है वर्क प्लेस आपका जॉयफुल होना चाहिए कि जहां भी आप काम करते हैं, समझिए कोचिंग के लिए आप जा रहे हैं, फील्ड में आप जा रहे हैं, टीम के साथ आप जा रहे हैं, तो जितना टीम के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन है, जितना टीम के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं, उतना टीम की आपको सपोर्ट भी मिलेगी, मॉरल सपोर्ट भी मिलेगी, बूस्ट भी मिलेगा. जो आपके कोचेज हैं वो भी आपसे प्यार से बात करेंगे, क्योंकि आप अगर उनको सम्मान दे रहे हैं तो वो भी आपको सम्मान दे ही रहे हैं, वो उतना आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाएंगे. तो जो भी हमारा फील्ड बन रहा है, जहां भी हम काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के आप फिजिकल एजुकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, प्लेयर्स हैं, कोच हैं, जो भी आपका फील्ड है, उस फील्ड को अच्छे से बड़ा एंजॉयबल बना के रखिए कि आप जाते हैं आपके 6 से 8 घंटे बड़ा रिफ्रेशिंग बीतते हैं. जब आप घर जाएं तो हंसते हुए जाएं, स्ट्रेस में न जाएं. घर जाकर बच्चों से जब मिलें तो बच्चों को ये ना लगे कि पापा का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, थोड़ा दूर रहो, तो बच्चों को आपसे दूर ना जाना पड़े, है ना. तो बड़ा एक एंजॉयफुल माहौल बनाइए. और जब सारा दिन हम अच्छे रहे हैं, वर्क प्लेस पे अच्छे रहे हैं, तो घर जाके भी यकीनन वो हमारा रिफ्लेक्ट होता है, हमारा बिहेवियर भी रिफ्लेक्ट होता है, हमारी मन की जो स्थिति है वो भी रिफ्लेक्ट होती है, और हम अच्छे से उस माहौल को मेंटेन करते हैं, खुश रह पाते हैं. फिर है मेंटेन हॉबीज और लेजर टाइम, कि जो भी आपकी हॉबी है उसको मेंटेन रखिए. और कम से कम हफ्ते में, वैसे तो रोज अगर कोशिश करें, आधा घंटा अपने लिए निकालिए, बिल्कुल एकांत, लेजर टाइम, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, रिलैक्स, अपना आत्मचिंतन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, आत्म सर्वेक्षण कीजिए, उसको डायरेक्शन दीजिए. ये सारी चीजें कम से कम आधा घंटा कोशिश करके, अगर 24 आवर्स हमने लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए निकाले हैं, तो 24 मिनट कम से कम अपने लिए, जहां सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है, वो आत्मनिरीक्षण जैसे जैसे आप करते हैं वो आपको आगे प्रोग्रेस करने में बड़ी अच्छी मदद करते हैं. और कोई भी फिटनेस का कोई भी इशू अगर बना है तो बड़ी जल्दी से आप उसको रिकवर कर जाएंगे. चलिए नेक्स्ट है, कुछ और पॉइंट्स हैं ये, जैसा कि यहां आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा सिखाते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें बाबा ने मुरलियों से सिखाई हैं. ये टोटल जो पॉइंट्स हैं ये सारे हमारे मुरली के पॉइंट हैं, बाबा के ज्ञान के पॉइंट हैं. जैसे बाबा कहते हैं कि हाई एनर्जी वोकैबुलरी, जो भी हमारे शब्द हैं वो एनर्जी से भरपूर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, कोई दोस्त से आपका 2-4 महीने बाद मिला है और आपने उसको देखते ही कहा, यार बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो यार, क्या बीमार लग रहे हो, 4 महीने से मिले भी नहीं यार, आते भी नहीं हो, क्या कर रहे हो. अब वो जब तुम्हारे साथ बैठेगा, यार लग तो रहा है कुछ, किसी और ने भी कहा था शायद, है ना. तो इस तरह से वो चीजें हमें पूरा करना, हाँ, तो वो चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखें. चलिए, तो बस ये 2 पॉइंट और करते हैं फिर पूरा कर देते हैं. डिवाइन वैल्यूज, जितना वैल्यूज आप जीवन में धारण करते हैं वो आपको मदद करती हैं. और बाबा जैसे बताते हैं कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता, पवित्रता, वो अच्छे से रखें, और सबसे बेस्ट है राजयोग की प्रैक्टिस करें. तो अभी समय पूरा हो गया, इसको पूरा करते हैं 1 मिनट.
थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई साहब जी ने बहुत अच्छी बात बताई. एक तो स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरे में ओबेसिटी हो गया, शुगर हो गया, हमारे लिए योग और मेडिटेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कि स्पोर्ट्स जितना ज्यादा हमारे लिए मेडिटेशन और योग है उतना ज्यादा हमारे लिए स्पोर्ट्स भी है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ भाई जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। चलिए ओम शांति।
थैंक यू।